हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 87 विक्रांत ने वसुंधरा के गर्दन से पकड़कर उसे हवा में उठाया हुआ है और बस उसके नाखून वसुंधरा की गर्दन में अंदर तक करते जा रहे हैं और जैसे ही वो इतनी ज्यादा अंदर तक धंस गए कि वसुंधरा की गर्दन से खून निकलने का और किसकी गर्दन पर खून की कुछ बूंदें नजर आने लगे, उसके साथ ही वसुंधरा की आंखें बंद होने लगी। वो पूरी तरह से बेहोश होने ही वाली थी कि तभी विक्रांत को इस बात का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही इस गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली की और तुरंत ही उसे हवा से नीचे नीचे कर लिया। विक्रांत ने जैसे ही अपना हाथ वापस लिया, वो वसुंधरा को वहां पर खड़ा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एकदम किसी बेजान शरीर की तरह वहीं पर निढाल होकर गिरने ही वाली थी। तभी विक्रांत ने खुद ही आगे बढ़ाकर उसे थाम लिया और एक गहली सांस लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या करने वाला था मैं? अपने गुस्से में अभी अगर मैं इसकी जान ले लेता तो मेरी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर जाता। नहीं नहीं, राजकुमारी वसुंधरा को कुछ नहीं होना चाहिए, आखिर यही तो मेरी किस्मत की चाबी है। इतना बोलते हुए उसने वसुंधरा को गोद में उठाया और उसे उस संकरी जगह से निकालकर वहां गुफा में आगे एक खुली जगह पर लेकर आ गया, जहां पर काफी बड़े बड़े पत्थर भी थे और एक बड़े से सपाट पत्थर पर उसने वसुंधरा को सीधा लुटा दिया और उसके गर्दन पर जो अभी अभी ताजा जख्मों के निशान नजर आ रहे थे उनकी तरफ ही देखने लगा। और तभी विक्रांत ने अपना हाथ ऊपर किया और किनारे पड़ा हुआ एक नुकीला पत्थर उठाकर उसने अपनी हथेरी पर एक गहरा सा कट लगाया। उसका हाथ कटते ही उसके हाथ से खून की बूंदें निकलने लगी और वो खून की बूंदें जैसे ही नीचे गिरने वाली थीं, विक्रांत ने अपना हाथ वसुंधरा की गर्दन के ऊपर किया और उसके जख्मों वाली जगह पर विक्रांत ने अपना खून गिराया और जैसे ही उसका खून वसुंधरा के खून में मिला, देखते ही देखते उसकी गर्दन के घाव एकदम ही ठीक हो गए और वो जगह भी एकदम पहले की तरह हो गई। और अब देखने पर वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि अभी कुछ देर पहले वसुंधरा की गर्दन पर वो गहरे जख्मों के निशान थे जो कि विक्रांत के ही नाखून गढ़ाने की वजह से बने थे। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच चंद्रिका ने जो अपने पास से अंगूठी निकालकर वीरेश की तरफ बढ़ाई, वीरेश काफी ध्यान से उसे अंगूठी की तरफ ही देख रहा था। अंगूठी की तरफ देखते हुए एकदम से बोला, क्या सच में ये वसुंधरा की है? लेकिन मैं तो ये उसके हाथ में नहीं देखी और अभी तुमने अपनी उंगली से उतार कर दी है। हाँ, ये अंगूठी राजकुमारी वसुंधरा की ही है और तुमने इतना शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जिस दिन महल पर हमला हुआ उसी दिन तक ये अंगूठी राजकुमारी की उंगली में ही थी और जब वो उन्हें वहां से ले गया शायद उसे वक्त ये वहां उनकी उंगली से गिरी होगी। बाद में मैंने देखा था तो उनकी याद में उठकर मैंने अपने हाथ में पहन ली थी। इससे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वसुंधरा मेरे आसपास ही है और मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ये अंगूठी दिखाई। चंद्रिका की बात सुनकर वीरेश ने उसे अंगूठी को लिया और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और फिर धीरे से अपनी आंखें। वो जब ऐसा कर रहा है तो चंद्रिका बहुत ध्यान से उसकी तरफ ही देख रही, इस तरह से जैसे कि वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हो कि वीरेश आखिर क्या कर रहा है। हमेशा की तरह ही चंद्रिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब तक उसे इन चीजों की आदत हो चुकी तो उसे पहले जितनी हैरानी नहीं होती। कुछ ही पल में वीरेश ने अपनी पलके हल्के से खोली और बेबसी से अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की और दोबारा से खोली। उसका ऐसा मायूसी भरा चेहरा देखकर चंद्रिका समझ गई कि इससे उन लोगों की कोई भी मदद नहीं हो पाएगी। शायद इसीलिए वीरेश इस तरह से मायूस लग रहा है, लेकिन फिर भी अपनी आदत के अनुसार चंद्रिका ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों सर हिला रहे हो? कुछ पता चला या नहीं वसुंधरा के बारे में? नहीं, कुछ भी मददगार साबित नहीं हुई ये अंगूठी, क्योंकि इस तुमने अपने हाथ में पहन लिया तो अब इससे मुझे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा मिल रही है। तुम काफी टाइम से इसे पहने हुए हो, हमले को तो 5-6 दिन बीत चुके हैं और तब से ये तुम्हारी उंगली में है, तो अब पूरी तरह से तुम्हारी अंगूठी हो चुकी है। इसका मतलब हमें अंगूठी नहीं पहननी चाहिए थी। वीरेश की बात सुनकर चंद्रिका ने इस तरह मायूसी से सवाल किया तो वीरेश ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि किसी की चीजों से हम उसका पता लगा पाएं। हाँ, उन चीजों से जरूर पता लगा सकते हैं जो अभी तक उनके साथ हों, लेकिन जो ऐसे काफी टाइम पहले उनके शरीर से अलग हो गई हों उन चीजों से हम उनका पता नहीं लगा सकते। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करें बताओ? चंद्रिका ने फिर से उससे पूछा। वीरेश को खुद भी नहीं पता कि उसे आगे कहाँ जाना है और क्या करना है। उसे पर बार बार चंद्रिका के इस तरह से सवाल उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम तो बार बार मुझसे ऐसे पूछती हो जैसे कि वो विक्रांत मुझे बताकर गया था महल से कि वो वसुंधरा को लेकर कहाँ जा रहा है। मुझे सच में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हमें पता करना है तो चलो हमें वहां उन काली पहाड़ियों पर जाना होगा जहां सारी काली शक्तियों का ठिकाना है। विक्रांत जरूर उसे पहाड़ी की चोटी पर ही रहता होगा क्योंकि वो खुद को सबसे ऊपर मानता है। बहुत दूर स्थित कुछ अजीब से दिखने वाले पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए वीरेश ने कहा और उसे तरफ देखकर चंद्रिका को बहुत ही अजीब सा लगा और उसे वहां पर जाने का मन नहीं कर रहा। भले ही वसुंधरा वहां पर मिल जाए लेकिन फिर भी चंद्रिका वहां पर जाने से कतरा रही है। विक्रांत की बात काटते हुए चंद्रिका बोली, अगर तुम्हें ठीक से कुछ भी नहीं पता है तो बेवजह ऐसे आगे बढ़ने से पहले हमें राजकुमार को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। वीरेश उसकी बात का जवाब देता हुआ बोल, हाँ लेकिन राजकुमार को ढूंढने के लिए रास्ते में हमें उल्टा वापस जाना होगा। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि राजकुमार समर अभी तक वहां पर ही हो, वो भी वहां से कहीं आगे इधर उधर चले गए होंगे। हाँ तो क्या हुआ, अगर वो कहीं चले भी गए होंगे तो हमें वहां पर ही उन्हें ढूंढना है। देखो इस तरह से अगर हम राजकुमार को रास्ते में छोड़ देंगे तो उनके लिए ये सब बहुत खतरनाक है और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, उसे तो कोई रास्ते भी पता नहीं होंगे। चलो ठीक है हम वापस चलते हैं, लेकिन क्या तुम चल पाओगी? मेरा मतलब है हमें फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जाना होगा, तो तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या? थोड़ा सा सोचते हुए वीरेश ने चंद्रिका की तरफ देखकर उससे पूछा। चंद्रिका पहले तो सच में पड़ गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने ठीक से कुछ भी खाया पिया नहीं है, लेकिन जब वो इस सफर पर राजमहल से निकली थी तब वो पहले से ही सारी चीजों के लिए तैयार थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना कठिन होगा और इतने दिनों की मेहनत के बाद भी उसे राजकुमारी का पता क्या जरा सा सुराग भी नहीं मिल पाएगा और राजकुमार जो कि उसकी मदद के लिए उसके साथ यहां तक आया था उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए चंद्रिका ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने से ज्यादा अभी भी राजकुमार और राजकुमारी की फिक्र है। वो अभी भी वसुंधरा को ही राजकुमारी मानती है, खुद को नहीं, लेकिन ये बात उसे अब अच्छे से पता है कि उसकी वजह से ही वसुंधरा महल से गायब हुई और विक्रांत उसे लेकर गया, नहीं तो उसकी जगह पर यह सब कुछ चंद्रिका के साथ होता।
इसलिए पूरे जोश में अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए चंद्रिका ने कहा, चलो जहां भी चलना है मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस राजकुमार समर को ढूंढ निकालो। जल्दी ही मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, उनके बारे में सोचकर बहुत डर लग रहा है। वीरेश वो ठीक तो होंगे ना? इतना बोलते हुए चंद्रिका ने वीरेश के पास आकर उसकी बाँह एकदम से ही पकड़ लिया और बहुत उम्मीदवारी नजरों से वो वीरेश की तरफ देखने लगी। वीरेश ने उसके हाथ पर हल्के से अपने हाथ से थपथपाते हुए कहा, हाँ राजकुमार ठीक होंगे, तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है फिर चलो यहाँ से। काफी घंटे तक चलने के बाद वो दोनों उसे पहाड़ी पर ही सबसे ऊपर पहुंच गए और वीरेश रास्ते का बहुत ही ध्यान रख रहा था, वो किसी भी और शक्ति के इलाके में कम नहीं रखना चाहता था। लेकिन वहां पहाड़ी पर पहुंचकर लोगों ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। हाँ मिट्टी में कुछ कदमों के निशान बने हुए हैं जो कि शायद उन लोगों के ही हो सकते हैं जब वो तीनों वहां पर थे और उसमें से कुछ समर के, लेकिन वो निशान किसी भी तरफ जाते हुए नहीं लग रहे, तो वीरेश समझ नहीं पाया कि आखिर समर वहां से कहां चला गया और कैसे। राजकुमार, राजकुमार कहां है आप? चंद्रिका ने थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो वीरेश जल्दी से भागकर उसकी तरफ आया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? राजकुमार तो नहीं, लेकिन आसपास जितने भी और लोग होंगे वो सब सुनकर जरूर हम पर हमला करने आ जाएंगे, और हर जगह पर इस तरह से चिल्लाया नहीं जाता है, पिछली बार भी तुमने तेज आवाज में चिल्लाकर मुसीबत खड़ी की थी। वीरेश की बात सुनकर वसुंधरा चुप तो हो गई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर हम राजकुमार को ऐसे आवाज नहीं लगाएंगे तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने ढूंढते हुए यहाँ पर वापस आए हैं? वीरेश ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन राजकुमार के अलावा अगर किसी और को भी पता चल गया तो फिर हमारा शिकार होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम दोनों क्या कोई हिरन खरगोश हैं जो आकर कोई हमारा शिकार कर लेगा? चंद्रिका बहुत ही मासूमियत से बोली, क्योंकि वो बाकी सारी चीजों से अनजान है। जो कुछ भी वीरेश को पता है चंद्रिका को उसके बारे में दूर दूर तक कुछ भी नहीं पता है। अरे वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, वो कल रात वाली पिशाचिनी याद है ना तुम्हें? वीरेश ने उससे पूछा तो चंद्रिका ने ऊपर नीचे हाँ में अपना सिर हिलाया और तभी वीरेश आगे बोला, अच्छा याद है तो बस ये समझ लो कि उसी तरह के बहुत सारे अनजान खतरे यहाँ बिना ढूंढे ही मिल जाएंगे, और अगर उन्हें हमारे यहाँ होने की भनक लगी तो फिर हम राजकुमार को तो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, खुद भी इस जंगल में पता नहीं कहाँ खो जाएंगे कि फिर हमें भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वीरेश की ऐसी बातें सुनकर वसुंधरा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया और वो थोड़ा डरते हुए बोली, ये इस तरह से डरा क्यों रहे हो? वीरेश उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, आधी रात को जब अकेले महल से बाहर निकल रही थी उसे वक्त डर नहीं लगा था तुम्हें, और अब मैं तुम्हें यहाँ की सच्चाई बता रहा हूँ तो डर लग रहा है। इस तरह बिना कुछ जाने सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में यही होता है। हाँ ठीक है, हमें कोई भी डर नहीं लग रहा, और तुम कौन से कोई बहुत बड़े बहादुर इंसान हो, इतने दिनों में हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहे हो, बस हमें जंगल में यहाँ से वहाँ भटका कर, और तुम्हारी वजह से राजकुमार भी अब हमें नहीं मिल रहा है, बताओ हम क्या करेंगे। वसुंधरा बहुत ही ज्यादा मायूसी के साथ अपना सिर पकड़कर वहाँ पर बैठते हुए बोली। उसके ऐसे इल्जाम सुनकर वीरेश का मुख खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो कुछ भी हो रहा है चंद्रिका उन सबका इल्जाम उसके ऊपर ही लगा देगी, जबकि वो तो अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश ही कर रहा है। 5. जो कुछ भी अब तक हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उन सब में असल में किसकी गलती है, और क्या वीरेश चंद्रिका इस तरह से आपस में ही लड़ते रहेंगे और कभी नहीं बच पाएंगे वसुंधरा तक? क्या लगता है आप लोगों को, क्या राजकुमार समर उन दोनों में से किसी को मिलेगा?